कहीं ना कहीं वंशिका आस्था के इस तरह के रिएक्शन से काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। उसे तो लगा था कि अपने पति पर हुए हमले को लेकर आस्था उसे डांटेगी, बातें सुनाएगी, हो सकता है कि उसे कभी बात भी ना करे। लेकिन आस्था का जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अभी वो दोनों आपस में गले लगकर खड़ी हुई थीं कि तभी अचानक वहां पर रश्मि खिलखिलाती हुई आई और आस्था को गले से लगाकर बोली, आस्था, अरमान भाई को होश आ गया है। जैसे ही आस्था ने ये सुना उसका दिल हल्का फुल्का हो गया, लेकिन उसने बिना किसी इमोशन के रश्मि की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, ठीक है रश्मि दी, मैं वंशिका को लेकर सिंघानिया मेंशन जा रही हूँ, आप सबको बता दीजिएगा। ये बोलकर बिना रश्मि की कोई बात सुने आस्था फटाफट से वंशिका का हाथ पकड़कर मेंशन की ओर रवाना हो गई। वहीं अविनाश और अबीर ये सारी बातचीत नोटिस कर चुके थे। तब अबीर ने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर आस्था ने ये बेरुखी अरमान को दिखाई तो अरमान तो इस दुनिया को आग लगा देगा। अविनाश अफसोस से उस तरफ देख रहा था जहाँ आस्था गई थी। वो दर्द भरी आवाज में बोला, उसने अपने दिल पर बहुत सारे गहरे घाव खाए हैं और अब उन घावों को भरना इतना आसान नहीं होगा। और उन घावों पर एक और घाव लग गया है, उसके अपने पति के डेविल किंग होने का। उसने डेविल किंग के बारे में आज तक सिर्फ गलत ही सुना है, शायद इसीलिए वो इस पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि हमें उसे अब थोड़ा स्पेस देना चाहिए और वो जब अपने आप को संभाल लेगी उसके बाद एक बार फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। उन दोनों को बात करते हुए किसी और ने नहीं बल्कि दादाजी ने सुन लिया था। दादाजी जो आस्था से मिलने के लिए वहां आ रहे थे, उन्हें काफी हैरानी हुई कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ आस्था के साथ, वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। और दादाजी को याद आया जब उन्होंने आस्था की शादी अरमान से करवाई थी तो उन्होंने आस्था के माँ बाप की फोटो देखनी चाही थी, और जब उन्होंने फोटो देखी थी तो उन्हें समझ में आ चुका था कि आस्था के पेरेंट्स की मौत किस तरह से हुई थी। फिलहाल दादाजी के लिए आज आस्था रहस्यमय बन गई थी, क्योंकि जब से अरमान और राजवीर को दादाजी ने एक दूसरे से अलग किया था, दादाजी राजवीर की चुपके से पूरी तरह से खबर रखते थे। लेकिन जब राजवीर की पत्नी की मौत हुई थी, उसके कुछ महीनों तक तो राजवीर दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब सा हो गया था। लेकिन जब दादाजी को आस्था के माँ बाप की हत्या के बारे में पता चला, तब उन्हें ये पता चल चुका था कि ये हत्या भी राजवीर ने की है। और आज तक दादाजी इस बात के बारे में पता नहीं लगा पाए थे कि आखिरकार उनकी मौत का क्या कारण हो सकता है और राजवीर ने गांव जाने वाले दोनों पति पत्नी की जान क्यों ली थी। दादाजी ने सोच लिया था कि उन्हें अब सीधे सीधे आस्था से बात करनी ही होगी। वहीं दूसरी ओर आस्था वंशिका को सीधा मेंशन ले आई और मेंशन के नौकर हैरानी से आस्था को देख रहे थे, क्योंकि सभी नौकर चाकर, खासकर राजेश जो कि उनका काफी पुराना नौकर था, उसको इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अरमान सिंघानिया की हालत इस वक्त कितनी ज्यादा नाजुक है। लेकिन आस्था को इस तरह से सिंघानिया मेंशन में देखकर वो लोग काफी हद तक हैरान हो गए थे। लेकिन आस्था तो वहां पर सीधा अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की फेवरेट साड़ी और अपने पुराने कुछ कपड़े और फोटोग्राफ एक बैग में पैक करने लगी थी। वंशिका ये देखकर पूरी तरह से चौंक गई और बोली, आस्था तुम आखिर कर क्या रही हो? इस तरह से तुम भला अपने कपड़े कैसे पैक कर सकती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पति की इस वक्त क्या सिचुएशन है। आस्था ने वंशिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी ओर देखकर बोली, तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ सिंघानिया मेंशन सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम सेफ रह सको, क्योंकि अगर तुमने कहीं और जाने की कोशिश की, पूरे शहर में कहीं और अपना सर छिपाने की कोशिश की, तो अरमान जी के आदमी तुम्हें वहां से भी खोज निकालेंगे। इसीलिए तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह अगर कोई है तो वो सिंघानिया मेंशन में ही है। और हाँ, एक और बात, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, मैं वाकई यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी खूनी और स्पेशली उस इंसान के साथ जो कि राजवीर जिंदल को अपना आइडियल मानता है, उसके साथ में किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगी। जैसे ही आस्था ने यह बताया वंशिका को, आस्था के दिल में अरमान के लिए नफरत साफ महसूस हो रही थी, लेकिन वंशिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार आस्था को इतना ज्यादा गुस्सा किस बात से आ रहा है। क्या इस बात से कि उसका पति डेविल किंग है, या इस बात से कि राजवीर अरमान का गुरु है और वो राजवीर के साथ मिला हुआ है। वंशिका अभी इसी उलझन में थी कि तभी अचानक उन्हें उस कमरे में किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। अभी तो आस्था और वंशिका दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि इस वक्त मिस्टर आलोक सिंघानिया यानी कि दादाजी खड़े हुए थे। अब वंशिका दादाजी को देखकर हैरान हो गई और अगले ही पल वंशिका की आंखों में आंसू आ गए और वो दादाजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और शर्मिंदा होकर बोली, दादाजी मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने आपके पोते को हर्ट किया। जैसे ही वंशिका ने ये बोला, दादाजी ने केवल उसके सर पर हाथ रखा और फिर आस्था की ओर देखकर बोले, बेटा मैं इस वक्त आस्था से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, तो तुम इस वक्त हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो और बेटा तुम गेस्ट रूम में जाकर वहां आराम करो। जैसे ही दादाजी ने बोला, वंशिका ने एक नजर आस्था की ओर देखा, जो कि चुपचाप अपना बैग समेटे खड़ी हुई थी, और अगले ही पल वंशिका उस कमरे से बाहर निकल गई। दादाजी ने ऑलरेडी राजेश को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। राजेश ने वंशिका का सामान दादाजी के कहने पर, टाइगर और मारिया ने वंशिका का सामान उसके कॉलेज के पास वाले उसके रेंटल हाउस से मंगवा लिया था और सीधा सीधा मेंशन में शिफ्ट करवा दिया था। वंशिका को भी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी ये इतना सब कुछ अरेंजमेंट कैसे हो गया, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि अरमान के नाम का पूरे शहर में सिक्का चलता है, तो उसके लिए घर ढूंढना और उसमें से सामान निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आस्था के चेहरे को देखकर दादाजी कुछ पल कुछ सोचते रहे, क्योंकि आज आस्था के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, ना दर्द का, ना ही किसी तरह का कोई इमोशन था। बिल्कुल सपाट चेहरा लिए आस्था वहां खड़ी हुई थी। तभी आस्था को वहां इस तरह से देखकर दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड के किनारे पर बिठाते हुए कहा, बेटा मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी मुझे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगी। दादाजी को कहीं ना कहीं इस बात का पूरा यकीन था कि आस्था उन्हें किसी भी तरह का कोई धोखा या झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन आस्था केवल बिना किसी इमोशन के दादाजी की ओर देख रही थी। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में नानी माँ को होश आ गया था। नानी माँ को जैसे ही होश आया वो उठकर तुरंत बैठ गईं। हालांकि उनके सर पर लगी हुई चोट ठीक हो चुकी थी, क्योंकि काफी दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थीं। अब नानी माँ को अचानक से होश आ जाने पर सभी लोग हैरान हो गए और काफी ज्यादा खुश भी हो गए। स्पेशली रश्मि तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ये खबर पर्सनली आस्था को देना चाहती थी। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि शायद आस्था अरमान की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, और जब उसे ये पता चलेगा कि नानी माँ को अब ठीक हो चुकी है तो शायद आस्था काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। इसीलिए रश्मि बस ये खबर देने के लिए जल्दी से आस्था को फोन करने के लिए जाने लगी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आहान रौनक को एक प्राइवेट वार्ड में ले आया था और वहां जाकर उसने उसे सीधा एक थक्के से दे दिया था, जिससे रौनक फर्श पर गिर गई थी।
अब रौनक गुस्से से घुरकर अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हुई और आहान की ओर देखकर दहाड़ते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी मिस्टर सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करने की। ये बोलकर रौनक ने अपनी लड़ाकू लैंग्वेज में आहान को गाली देना शुरू कर दिया था। उस वक्त रौनक के मुंह में जो आ रहा था वो बकवास किए जा रहा था। अब रौनक को इस तरह से बोलते हुए देखकर आहान को कुछ समझ नहीं आया और उसे इस वक्त वो सिर्फ रौनक को चुप करवाना चाहता था। अचानक उसने अपने होठों से रौनक के होठों को सील कर दिया था और अब रौनक कुछ नहीं बोल पा रही थी, सिर्फ अपनी आंखें खोले लगातार आहान को घूर रही थी। लेकिन आहान तो उस वक्त सिर्फ रौनक को चुप करना चाहता था, क्योंकि वो काफी देर से पटर पटर किए जा रही थी तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए बस वो उसे चुप करवा रहा था। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और तब जाकर उसने रौनक को छोड़ा था। केवल 5 से 7 मिनट की डीप किस के बाद रौनक की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक होने पर आहान का मूड पूरी तरह से बिगड़ गया था और वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि दरवाजे पर एक नर्स खड़ी हुई थी। वो आहान को शांत आवाज में बोली, सर, रश्मि मैडम ने आपको ये बताने के लिए भेजा है कि नानी माँ को होश आ गया है। जैसे ही उसने ये बताया आहान काफी खुश हो गया था। खुशी के मारे उसने उस नर्स को ही गले से लगा लिया था। अब तो रौनक ने जैसे ये देखा वो खा जाने वाली नज़रों से आहान और नर्स को घूरने लगी। वहीं आहान भी अब थोड़ा सा सकपका गया था और फटाफट से नर्स को खुद से दूर करता हुआ सीधा रौनक की ओर देखकर वार्निंग देते हुए बोला, आइंदा से मुझ पर गलत इल्ज़ाम मत लगाना। उस वक्त मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, और अगर तुमने इस तरह से दोबारा मेरे सामने पटर पटर करने की ज्यादा कोशिश किया तो एक बार फिर से मैं तुम्हें इसी तरह से चुप कर दूंगा, समझी तुम। ये बोलकर सारी बातों को रौनक के ही सर पर डालकर आहान वहां से चला गया था, और रौनक अब कन्फ्यूजन में खड़ी होकर अपने बाल नोचने लगी कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या, इसने मुझे किस किया, साथ ही साथ ये मुझे बातें भी सुनाकर चला गया, आखिर चल क्या रहा था। रौनक अपने पैर पटक कर रह गई थी और उसने सोचा कि इस छछुंदर को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले जाकर मुझे नानी माँ से मिलना चाहिए। ये सोचते हुए जल्दी ही रौनक भी खुश होकर कमरे से बाहर निकल गई थी। वहीं दूसरी ओर सभी लोग बारी बारी से नानी माँ से मिलने लगे। नानी माँ उस वक्त काफी ज्यादा एनर्जेटिक सी थी और उठकर वो सबसे बारी बारी से गले मिलते हुए कहती हैं, मेरे बच्चों ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने बता दिया कि उन पर दुर्जन सिंह ने हमला किया था। बारी बारी से नानी माँ ने सारी सच्चाई उन लोगों को बता दी थी। तब सब लोग कहने लगे कि उन्हें पहले ही शक हो गया था कि दुर्जन सिंह ने ही नानी माँ पर हमला किया है। दुर्जन सिंह को उसकी अच्छी खासी सजा मिल चुकी है। इतना ही नहीं, टाइगर और मारिया ने सुमित और आकाश के इंस्ट्रक्शन पर दुर्जन सिंह को गांव वाली जेल से निकलवाकर शहर वाले जेल में शिफ्ट करवा दिया था, जहां पर अरमान सिंघानिया का कानून चलता था, और अब अरमान उसे अपने स्टाइल में सजा देने वाला था।
लेकिन होश में आने के बाद, क्योंकि वो लोग जानते थे कि डेविल किंग कब क्या कर सकता है, और अगर आकाश और सुमित दुर्जन सिंह को जेल में से नहीं निकालते तो हो सकता है कि अरमान सिंघानिया खुद जाकर उसे जेल में ही अपने हिसाब से सजा देता, तो फिर उन लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने पहले ही अरमान सिंघानिया के सारे पेंडिंग काम को करना कंटिन्यू कर दिया था, और कुछ दिन शहर वाली जेल में रखने के बाद उनका इरादा दुर्जन को रिहा करवाकर उसे सीधा फार्म हाउस में कैद करने का था। अब जैसे ही नानीमा को पता चला कि दुर्जन सिंह को ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, तो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी वो रश्मि, राधिका और एंजल सबकी ओर देखते हुए पूछती हैं, लेकिन आस्था कहाँ है? आस्था दिखाई क्यों नहीं दे रही है? तो मजबूरन रश्मि को अरमान पर हुए हमले से लेकर सारी बात नानीमा को बतानी पड़ी, क्योंकि नानीमा काफी ज्यादा इंसिस्ट करने लगी थी। नानीमा उन सबके साथ रहकर उनकी आंखों की उदासी और उनके मन की बात उनके चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ना सीख गई थी, और उन सबकी आंखों में उदासी थी और सबके चेहरे उतरे हुए थे, तो नानीमा समझ चुकी थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसीलिए नानीमा ने उन पर जोर देकर सब जानने की कोशिश की थी, और जल्दी ही सारा सच सुनने के बाद नानीमा के तो होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। हालांकि रश्मि ने उन्हें कहा भी था कि आप काफी टाइम से कोमा में थी, वैसे भी आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन नानीमा ने ममता भरी आवाज में कहा, मैं कोमा में भले ही थी लेकिन सारी बातें मैं अच्छी तरह से सुन रही थी, समझ रही थी, लेकिन ना जाने कब से उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ ही नहीं पा रही थी। मेरे बच्चे कितना ज्यादा रो रहे थे, कितने ज्यादा परेशान थे। कहीं ना कहीं नानीमा को अब सारी बातें याद आने लगती हैं।